जब मैं 8 वर्ष का था तब मेरे दो चचेरे भाइयों और मुझे नदी के शहर में 10 लोगों के हमारे परिवार के लिए 15 दिनों का किराने का सामान लेने के लिए भेजा गया था। मुझे आश्चर्य था कि मेरी दादी और मेरी चचेरी भाई और चाचा को हम पर कितना भरोसा था। उस सुबह का आकाश चमकीला और चमकदार था जब हम अपने 3 घोड़ों के छोटे कारवां में 16 किलोमीटर की यात्रा पर निकले थे।
हम
खेल में इतने मगन हो गए थे कि हमने अपने सिरों पर समय के चिन्हों को नहीं देखा। जब काले बादल आकाश पर घिर आए थे जब तक कि हम समझ पाते कि क्या हो रहा है, हमें घोड़े पर सवार होने का समय भी नहीं मिल पाया। भारी बारिश और ओले इतनी तेज से बरसने लगे कि हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि घोड़े की काठी खोल दे और काठी के छोटे गधे से अपने को ढक ले। बिना घोड़े के भीगे हुए और ठंड से ठुठरते हुए हमने अपनी यात्रा जारी रखी। अब हम इतना तेजी से चलने की कोशिश कर रहे थे जितना हम चल सकते थे। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमने देखा कि चौड़ा रास्ता जो शहर को जाता था उसमें पानी भर गया था और नदी के समान हमारी ओर चल रहा था। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता था कि हम अपने सिर पर रखे गद्दे को फेंके और शहर के चारों ओर लगी कांटीले तार को बाढ़ को पर चल जाएं। रात हो चुकी थी जब हमने थके और कहल और भीगे हुए शहर में घुसने के बाद दिखे पहले घर में शरण मांगी थी। उस भले युवा परिवार ने हमें सुखाया, हमें स्वादिष्ट बीन बिरिटीज दिए और फिर एक कमरे में हमें बिस्तर लिटाया। जल्दी ही हमें पता चल गया कि कमरे का फर्श सपाट मिट्टी का था, इसलिए हमें एक दूसरा विचार आया। हमने फर्श पर गोला बनाया और अपने कंचे के खेल को तब तक खेलते रहे जब तक हम थककर फर्श पर सो नहीं गए। बच्चों के रूप में हम बस अपने बारे में सोच रहे थे। हमने कभी भी उन परिजनों के विषय में नहीं सोचा जो हमारे पीछे घर पर बुरी तरह से हमारी खोज कर रहे थे। यदि हमने सोचा होता तो हमने बेकार के शौक में अपनी यात्रा में देरी ना की होती। और यदि हम बुद्धिमान होते तो अपने आकाश की ओर देखा होता, बादलों को देख बनते हुए पहचान जाते और तूफान से आगे रहने के लिए अपनी गति को तेज कर देते। अब जबकि मेरे पास थोड़ा अधिक अनुभव है, मैं हमेशा अपने को याद दिलाता हूँ ऊपर देखना न भूले। मेरे चचेरे भाइयों के साथ मेरे अनुभव ने मुझे हमारे समय के चिन्ह पर ध्यान देना सिखाया था। हम एक ऐसे तूफान भरे खतरनाक समय में रहते हैं जिसकी व्याख्या पॉलिस ने की थी। मनुष्य अब स्वार्थी, माता पिता के आगे टालने वाले, कृतज्ञ कृतन अब पवित्र, दोष लगाने वाले असयमी, परमेश्वर के नहीं बरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इन विषयों के बोलते हैं एल्डर डेलिन एच ऑक्स ने कहा था, हमें संसारिक और आत्मिक दोनों तैयारी करने की आवश्यकता है और जिस तैयारी के अनोखी देख होने की संभावना बहुत अधिक है वह कम नजर आती है और बहुत कठिन है, वह है आत्मिक तैयारी। अन्य शब्दों में ऊपर देखने को अनदेखा ना करें। इतने खतरनाक समय में आत्मिक तैयारी की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं एक बहुत मजबूत समय के चिन्ह के विषय में सचेत करना चाहता हूँ। मेरे पेशे ने मुझे तकनीकी में सबसे आगे रखा है, इसलिए मैं इसके मूल्य को समझता हूँ। विशेषकर सूचना के विषय में इतनी अधिक सूचना अब मनुष्य के उंगलियों पर है, लेकिन इंटरनेट बहुत अधिक गंदी और भटकाने वाली बातों से भी भरा हुआ है। तकनीकी ने हमारी बोलने की स्वतंत्रता का विकास किया है, लेकिन हमने दर्शकों की संख्या पर आधारित झूठी विश्वसनीय आने वाले योग्य ब्लॉगर भी दिखे हैं। इसलिए अब पहले से अधिक हमें इस अनंत नियम को याद रखने की जरूरत है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। विशेष रूप से मैं आपको सावधान करता हूँ, यीशु मसीह और भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गंदी छवियों को ना देखें या झूठे आरोप लगाने वालों पर ध्यान ना दें। दोनों ही बातों का एक ही प्रभाव होता है, पवित्र आत्मा और उसकी सुरक्षा व समर्थन करने वाली शक्ति चली जाती है। पाप और दुख ध्यान जीवन में आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपका सामना कभी ऐसी चीज से होता है जो सुसमाचार की आपकी गवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ ऊपर देखो। सभी ज्ञान और सच्चाई के स्रोतों को देखो, अपने विश्वास और गवाही का परमेश्वर के वचन से विकास करें। संसार में ऐसे लोग हैं जो झूठ को असत्य बातों के साथ मिलाकर आपके विश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप निरंतर आत्मा के योग्य बने रहें। पवित्र आत्मा की संगति केवल एक सुंदर सुविधा नहीं है, यह आपके आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मसीह के शब्दों को संजो कर रखते हो और आत्मा की चेतावनी को ध्यान से सुनते हो, आप धोखा नहीं खाओगे। यीशु मसीह जो परिपूर्ण था और जोसेफ स्मिथ जिसने स्वीकार किया था कि वह परिपूर्ण नहीं था, दोनों उन झूठे आरोपियों द्वारा मार डाले गए थे जिन्होंने उनकी गवाही को स्वीकार नहीं किया था। हम कैसे जान सकते हैं कि उनकी गवाही सच्ची है कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं और जोसेफ स्मिथ एक सच्चा भविष्यवक्ता है? उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचानोगे। क्या बुरे पेड़ पर अच्छे फल लग सकते हैं? मैं स्वयं के लिए जानता हूँ कि मुक्तिदाता ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है और मुझे मेरे व्यक्तिगत जुए से मुक्त किया है। मुझे आनंद की उस व्यवस्था में ले गया है जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं था। और उसने स्वयं के लिए जानता हूँ कि जोसेफ स्मिथ एक भविष्यवक्ता था क्योंकि मैंने मॉर्मन की पुस्तक की सरल प्रतिज्ञा का उपयोग किया है। मसीह के नाम में परमेश्वर से पूछो और यदि तुम सच्चे हृदय से के साथ वास्तविक उद्देश्य से मसीह में विश्वास करते हुए पूछोगे तो वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा तुम पर इसकी सच्चाई प्रकट करेगा। सरल शब्दों में ऊपर देखो। कुछ हैं जो कहते हैं कि मसीह के पुनरुत्थान या उसके पुनर्स्थापित सुसमाचार की सत्यता में विश्वास करने के लिए कुछ वास्तविक प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि मैं कोरी होर कहे आलमा के शब्द का उदाहरण देता हूँ, तुमने पर्याप्त चिन्ह पाया है, क्या तुम अपने परमेश्वर का लालच दोगे? क्या तुम कहोगे मुझे चिन्ह दिखाओ जबकि तुम्हारे पास इन सभी भाइयों की और सभी पवित्र भविष्यवक्ताओं की गवाही है? धर्मशास्त्र तुम्हारे सामने रखे गए हैं, आप और मैं उद्धारकर्ता के उद्धार की गवाही है। हम भविष्यवक्ता की सेवकाई और उन आरंभिक संतों की विश्वसनीयता की जीवित गवाही है जो अपनी गवाही में मजबूत बने रहे। यीशु मसीह का गिरजा अब संसार भर में फैल चुका है और इतना विकास कर रहा है जितना पहले कभी नहीं किया, जैसा कि यीशु मसीह के समय में था। उसे उन विनम्र लोगों द्वारा ग्रहण किया गया है जिन्हें विश्वास करने के लिए देखने और छूने की जरूरत नहीं। कोई नहीं जानता प्रभु दोबारा कब आएगा, लेकिन अभी तुम हमारे ऊपर संकट पूर्ण समय है। आज सच्चाई के स्रोतों को देखने का समय है और सुनिश्चित करे कि हमारी गवाहियां मजबूत हैं। उन परीक्षाओं के लिए तैयारी करें जिनका सामना हम अवश्य करेंगे। अपनी घटना पर वापस आता हूँ। मेरे चचेरे भाई और मैं अगली सुबह उठे तो सूरज चमक कर और आकाश सुंदर था। एक आदमी जो तीन खोए लड़कों को खोज रहा था उसे दरवाजा खटखटाया। उसने हमें घोड़ों पर बैठाया और हम उसी घास के मैदान से होते हुए घर के लिए वापस चल पड़े। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने घर वापस जाते हुए मार्ग पर देखा था। लोगों की एक भीड़ जो रात भर हमारी खोज कर रही थी, उनके ट्रैक्टर और ट्रक मेरे दिमाग में बस गए थे। उन्हें एक काठी इधर और घोड़ा उधर मिल गया था और जब उन्होंने हमें घर वापस आते देखा, मैं उनकी दिलासा उनके प्रेम को महसूस कर रहा था। शहर के रास्ते में हमारे भाइयों ने दौड़कर हमारा स्वागत किया और हम उनमें सबसे आगे मेरी प्रिय दादी और मेरे चाचा और चाची थे। उन्होंने हमें गले लगाया और रोए और बहुत आनंदित हुए कि उन्होंने अपने खोए बच्चों को पा लिया था। यह मुझे याद दिलाता है कि हमारा प्रिय स्वर्गीय पिता हमारे लिए चिंतित है। वह उत्सुकता से हमारे घर वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे चारों ओर घिरते तूफानों के चिन्ह हैं। आओ हम ऊपर देखें और अपने आप को तैयार करें। मजबूत गवाही में सुरक्षा है। आओ हम अपनी गवाहियों को प्रतिदिन संभालें और मजबूती दें। मैं जानता हूँ हम अनंतता में परिवारों के रूप में एक साथ मिलकर रह सकते हैं कि हमारा प्रिय स्वर्गीय पिता अपनी बाहें फैलाए और अपने बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता जीवित है। पत्रस के समान किसी मांस या लहू ने मुझ पर प्रकट नहीं किया है, लेकिन मेरे प्रिय पिता ने जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।